24 दिसंबर दिन रविवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। उत्तर कोरिया ने कहा अमेरिका का मुकाबला करने का एक ही तरीका और वो तरीका है अपना परमाणु कार्यक्रम मजबूत करना। जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश में विधायक दल का नेता चुना गया। 27 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। क्या है चुनौतियाँ?
बहुत बड़ी चुनौती तो फाइनेंशियल क्राइसिस है। हिमाचल इस टाइम 45,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, ना एयर की है, ना रेल की है। रोड की भी है, वो भी बड़ी बुरी हालत है।
दिनाकरन की जीत से तमिलनाडु में राजनीति गरमाई, खबर होगी विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, आदर्श राठौर से। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगाए गए ताजा प्रतिबंधों को युद्ध जैसी हरकत करार दिया है और इन्हें अपनी स्वायत्तता का उल्लंघन बताया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि ये आर्थिक नाकेबंदी जैसा है। उत्तर कोरिया पर ये प्रतिबंध पिछले महीने बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च करने की सजा के तौर पर लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों से उत्तर कोरिया के रिफाइंड ऑयल का आयात घट जाएगा। उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका हमारे परमाणु कार्यक्रम की प्रगति से डरा हुआ है और हम इस कार्यक्रम को मजबूत करते रहेंगे। रूस में विपक्ष के नेता एलेक्सी नवाल्नी ने मॉस्को में एक सभा में कहा कि पूरे रूस में उन्हें मिल रहा समर्थन दिखाता है कि वो राष्ट्रपति पुतिन के अच्छे विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने रूस को अपनी समृद्धि का स्रोत बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे चुनाव में खड़ा नहीं होने दिया गया तो मार्च में चुनावों का बहिष्कार कर दिया जाएगा। नवाल्नी ने कहा कि वो 20 शहरों से जरूरी 500 हस्ताक्षर हासिल कर रहे हैं, मगर केंद्रीय चुनाव आयोग ने उनसे कहा है कि गबन के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण वो अयोग्य हैं। नवाल्नी ने कहा कि ये मामले राजनीति से प्रेरित थे। कल पुतिन ने कहा कि रूस में गरीबी का स्तर शर्मिंदा करने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या यह आपकी वजह से नहीं हुआ? 18 सालों के शासन में गरीब लोगों का तेल, गैस और खरबों डॉलर की धातु को विदेशों में बेच दिया गया। गरीब लोगों को कंगाल कर दिया गया। आप खराब राष्ट्रपति हैं, आप देश नहीं चला सकते, और इन चुनावों में आपको चुनौती देते हैं कि जीत कर दिखाएं। ये थे रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी के शब्द। दक्षिणी सूडान में मुख्य विद्रोही संगठन ने सरकारी बलों पर युद्ध विराम लागू होने के कुछ ही घंटों बाद हमला करने का आरोप लगाया है। संगठन के नेता पूर्व उपराष्ट्रपति राइक मचर ने कहा कि सेना ने कोच कंट्री में हमला किया है। दोनों युद्धरत पक्षों में रविवार आधी रात से संघर्ष विराम लागू होना था। दक्षिण सूडान में राइक मचर और राष्ट्रपति साल्वा कीर की सेनाओं के बीच 4 साल से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। उष्णकटिबंधीय तूफान टेम्बिन दक्षिणी फिलीपीन से होकर गुजर गया है, मगर अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 70,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। राहत कर्मियों का कहना है कि करीब 150 लोग लापता हैं। तूफान का सबसे ज्यादा असर मिंडानाओ द्वीप पर देखा गया। यहां नदियों ने अपने किनारे तोड़ दिए और कई कस्बों और गांवों में पानी भर गया। फिलीपींस रेडक्रॉस के चेयरपर्सन रिचर्ड गॉर्डन ने बीबीसी को बताया कि उनका संगठन और अन्य सहायता एजेंसियां मिंडानाओ में राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। जो प्रांत प्रभावित हुए हैं वे देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक हैं और वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। शुरू में यहां 160 लोगों की मौत हुई थी। कई लोग जख्मी हुए हैं और कई लोग लापता भी हैं। भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के कारण भी कई लोगों की मौत हो गई। नदियों में उफान की वजह से पानी कई घरों में घुस गया, इससे भी नुकसान हुआ। ये थे फिलीपींस के रेडक्रॉस के चेयरमैन रिचर्ड गॉर्डन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक के शहर मौसुल में कथित इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को खदेड़े जाने के बाद यहां के ईसाई पहली बार क्रिसमस मनाने के लिए मुख्य चर्च में जमा हुए हैं। इस्लामिक स्टेट के शासन में ईसाइयों के लिए सार्वजनिक रूप से धार्मिक परंपराओं का पालन करना संभव नहीं था। उत्पीड़न से बचने के लिए बहुत से ईसाइयों ने इलाका भी छोड़ दिया था। तुर्की में सार्वजनिक क्षेत्र के 2,700 कर्मचारियों को उन संगठनों से संबंध रखने पर नौकरी से निकाल दिया गया है जिन्हें सरकार आतंकवादी संगठन मानती है। इन कर्मचारियों में से 600 से भी ज्यादा सेना में तैनात थे। पिछले साल जुलाई में नाकाम तख्तापलट के बाद से अब तक 1.5 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक पर भी लाइव सुन सकते हैं। आज आपके साथ मैं संदीप सोनी। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। साल 2017 अपने समापन की ओर जा रहा है, लेकिन अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर कोरिया ने पिछले महीने जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, अमेरिका ने उसके विरोध में उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए। अब उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका के ये प्रतिबंध युद्ध के समान हैं और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने इस सिलसिले में बाकायदा एक बयान जारी किया है। अमेरिका और उसके साथियों ने उत्तर कोरिया पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वो हमारी संप्रभुता के खिलाफ हैं। ये प्रतिबंध युद्ध की तरह हैं जो कोरियाई प्रायद्वीप और पूरे इलाके की स्थिरता और शांति भंग कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी इस बयान में ये भी कहा गया है कि अमेरिका का मुकाबला करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करना। अमेरिका के परमाणु खतरे, उसकी धमकियों और शत्रुतापूर्ण कदमों से निपटने के लिए हम अपने बचाव के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत करेंगे। ये थे उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी उस बयान का सार, जिसे सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया है। यहाँ श्रोताओं के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अमेरिका ने ऐसे कौन से प्रतिबंध लगाए हैं जिसके जवाब में उत्तर कोरिया का ये बयान आया है। मेरे सहयोगी मोहम्मद शाहिद इस बारे में और जानकारी जुटा कर लाए हैं और स्टूडियो में मेरे सामने बैठे हुए हैं। शाहिद, ये बताएं, उत्तर कोरिया अमेरिका के किन प्रतिबंधों की बात कर रहा है?
जी संदीप, पेट्रोल उत्पादों के आयात की सीमा 1 साल में 5 लाख बैरल और कच्चे तेल की सीमा 40 लाख बैरल प्रति साल कर दी गई है। और पहले लगाए गए प्रतिबंधों में उत्तर कोरिया के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 55% की कटौती की गई थी। इसे ताज़ा प्रतिबंधों के साथ और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा विदेशों में काम करने वाले सभी उत्तर कोरियाई नागरिकों को 24 महीने के भीतर अपने देश वापस लौटना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह विदेशी मुद्रा के आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अमेरिका ने इसके अलावा उत्तर कोरिया से मशीनरी और बिजली के उपकरण जैसी वस्तुओं के निर्यात पर शिकंजा कसा है।
शायद यही वजह है कि उत्तर कोरिया इसे आर्थिक नाकाबंदी करार दे रहा है। बहरहाल, ये थे मोहम्मद शाहिद जो अमेरिका के उन प्रतिबंधों के बारे में बता रहे थे जिन्हें उत्तर कोरिया ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
दिन भर में अब रुख भारत का, बात हिमाचल प्रदेश की, जहां आज जयराम ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर को सुनिए।
श्री जयराम ठाकुर जी का ही अभी एक नाम सब ओर से प्रस्तावित और समर्थित हुआ है, कोई अन्य नाम तो और प्रस्तावित नहीं होने वाला है? कोई प्रस्ताव दूसरा सामने विद्यमान नहीं है, इसलिए श्री जयराम ठाकुर जी को विधानमंडल दल का।
जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश में विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद जयराम ठाकुर ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं।
हम कोशिश करेंगे, जो उम्मीद हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमसे इस जनादेश के साथ व्यक्त की है, उस उम्मीद को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ में जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी जो एक बहुत बड़ी उम्मीद हिमाचल प्रदेश में इस सरकार से रखी है, उसको पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।
जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के नेता 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बहरहाल, मैंने अब से कुछ देर पहले शिमला फोन लगाया और वहां वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रचना गुप्ता से जानना चाहा कि जयराम ठाकुर की शख्सियत क्या है।
जयराम ठाकुर ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बिल्कुल ही किसान बैकग्राउंड के हैं और राजपूत, क्योंकि हिमाचल में काफी हैं तो राजपूत लॉबी को, राजपूत कास्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर से वो मंडी ऐसे स्टेशन से करते हैं जहां से कभी भी हिमाचल का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, या तो वो लोअर हिमाचल से बना या वो अपर हिमाचल से बना। तो मंडी एरिया मिडिल हिमाचल के नाम से जाना जाता है। सुखराम जो यहाँ के, आपको मालूम होगा, दूर संचार मंत्री थे केंद्रीय, तो उन्होंने भी बड़ा जोर लगाया कि मैं यहाँ से बनूं। उससे पहले करम सिंह नेता हुआ करते थे डॉक्टर YS परमार के समय में, तो वो भी मुख्यमंत्री की रेस में थे। तो मंडी और कुल्लू एक ऐसा क्षेत्र था जहां से कभी भी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, और इन जगहों के लोगों को हाईकमान ने एक्नॉलेज किया क्योंकि उन्होंने लोकसभा ही नहीं विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत जो है वो भाजपा के पक्ष में दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो न्यूट्रल चॉइस थे, नॉन कंट्रोवर्शियल थे, यंग थे और संगठन में भी उनका बहुत अच्छी पकड़ है, इस वजह से उनको चूज किया गया।
रचना गुप्ता, आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में जयराम ठाकुर से बड़े कद के नेता भी हैं, थे, अभी भी हैं, तो ये सहमति बनाने में दिक्कत हुई होगी, किसी तरह का अंतर्विरोध रहा होगा?
बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि 18 तारीख को 3-4 बजे तक पूरी स्थिति साफ हो गई थी जब मतगणना हुई थी कि 68 में से 44 सीटें भाजपा के पक्ष में आई पूरी तरह, और पार्टी अध्यक्ष भी हार गए और पार्टी के मुख्यमंत्री पद का जिनको अनाउंस किया था प्रेम कुमार धूमल वो भी हार गए। तो ऐसी स्थिति में कौन चॉइस बनती थी? पहले तो यही आया, चलता रहा कि हो सकता है धूमल को एक चांस और दे दें, ये विचार आया JP नड्डा को हिमाचल भेजा जा सकता है, पर क्योंकि JP नड्डा जी के पास दिल्ली में संसदीय मामलों का प्रभार है, पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां वो देखते हैं, महासचिव है, चुनाव समिति में वो काफी अहम रोल प्ले करते हैं और साथ में उनके पास हेल्थ जैसा महत्वपूर्ण महकमा भी है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अंत में जो टाई हुआ था वो हुआ था जयराम और धूमल के बीच में, तो संभवतः हाईकमान ने JP नड्डा जी की भूमिका केंद्र में रखने का फैसला किया और हिमाचल में एक नए विकल्प के तौर पर जयराम ठाकुर को पेश किया। क्योंकि अगर JP नड्डा को करते तो शायद हो सकता था कि किसी की सीट खाली करवाते, फिर बाय इलेक्शन होता, धूमल को भी कराते तो किसी की सीट खाली कराते, फिर बाय इलेक्शन होता, तो उन सब चीजों को अवॉइड करते हुए सीधे सीधे जो चुना हुआ प्रतिनिधि था उनमें जयराम के मुकाबले कोई टिकता नहीं था।
हिमाचल प्रदेश में ऐसी क्या एक दो बड़ी चुनौतियां आप देखती हैं जो नए मुख्यमंत्री के सामने मुंह बाएं खड़ी हुई हैं?
बहुत बड़ी चुनौती तो फाइनेंशियल क्राइसिस है। हिमाचल इस टाइम 45,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है और प्रदेश की जो 45% के करीब जो आमदनी है वो पैसा आपका पेंशन और भत्तों में चला जाता है और आपके पास विकास के लिए बहुत कम अमाउंट रह जाता है। अगर केंद्र सरकार की मदद ना मिले तो शायद राज्य में अपनी बेसिक जरूरतें पूरा करने के लिए भी पैसा ना हो। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, क्योंकि अभी से पहले जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने कभी भी ये प्रयास नहीं किए कि हिमाचल के रेवेन्यू रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाया जाए। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स है लेकिन यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, ना एयर की है, ना रेल की है, रोड की भी है वो भी बड़ी बुरी हालत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये प्रदेश की ग्रोथ अगर 3-4 पॉइंट्स पे, टूरिज्म पे, एप्पल पे, हॉर्टिकल्चर पे करनी होगी तो इनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और आज करेंगे तो उसके रिजल्ट कम से कम 10 या 15 साल में दिखेंगे।
जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश में विधायक दल का नेता चुना गया, 27 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। क्या है उनकी राह में चुनौतियां, बता रही थी शिमला से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रचना गुप्ता।
BBC से वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिए
ये नूर कैसा है, राख का सरंग बहने, बर्फ की लाश है लावे का सा बदन बहने,
मीना कुमारी का सफर, रेहान फजल की जुबान। साल 2017 में बैडमिंटन में भारत को बड़ी मेहनत से मिले दो जगमगाते सितारे।
This 2017 of course special है। I won some of the super series and world championship silver।
PV सिंधु और के श्रीकांत की कहानी मले नीरव की जुबानी।
अभी करंट वर्ल्ड नंबर 1 को हराया और ये बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर है मेरे लिए।
मोहनलाल शर्मा बताएंगे 2017 में किस तरह उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध के बादल मंडराते रहे।
मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर रहा हूँ,
क्योंकि पार्टी ने पहले ही निर्णय कर लिया है। प्रस्ताव करूंगा तो वही करूंगा जो पार्टी का निर्णय है।
हिमालयन मिस्टेक हुआ है।
भारत के वो राजनेता जो पार्टी के शिखर पर पहुंचकर भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। और भी बहुत कुछ बीबीसी वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिए 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक।
और दिन भर में अब बात दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में राजनीति गर्मा गई है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का देहांत होने के बाद खाली हुई चेन्नई की आर के नगर सीट पर शशिकला के भतीजे और निर्दलीय उम्मीदवार टीटीवी दिनाकरण ने बड़ी जीत दर्ज की है। जीत से उत्साहित दिनाकरण ने दावा किया कि तमिलनाडु की मौजूदा सरकार 3 दिन में गिर जाएगी। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आरके नगर उपचुनाव का नतीजा तमिलनाडु में हर किसी को हैरान कर दिया है। वीके शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनकरन ने ना तो सिर्फ अन्ना डीएमके को हराया बल्कि डीएमके के उम्मीदवार की जमानत भी जब्त करा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, दिनकरन की जीत इसलिए भी खास मायने रखती है क्योंकि वो अन्ना डीएमके के दो हरे पत्ते के प्रतीक पर चुनाव नहीं लड़े थे। चुनाव आयोग ने उनको इस बार प्रेशर कुकर का प्रतीक दिया था। दिनकरन पहले राउंड से ही अन्ना डीएमके उम्मीदवार पर जबरदस्त बढ़त बनाए रखे थे। दिनकरन ने पत्रकारों से कहा, आर के नगर के मतदाताओं ने अम्मा के असली वारिस को चुना है। हमारा विश्वास है कि ये सरकार अगले 3 महीनों में जाएगी। ये थे टीटीवी दिनकरन के शब्द। दिनकरन की जीत बहुत सारे मायने रखती है, खासकर अन्ना डीएमके के सरकार के लिए। हर किसी को पता है कि आम जनता एडप्पडी पलनीस्वामी और ओ पन्नीर सेल्वम की सरकार से खुश नहीं है। जयललिता के देहांत के बाद अन्ना डीएमके में फूट पड़ गई थी और कई महीनों के बाद वीके शशिकला और टीटीवी दिनकरन का गुट पलनीस्वामी पन्नीर सेल्वम से अलग हो गया था। इन हालात में डीएमके को लोग महत्व देते आए थे, लेकिन आज का चुनाव परिणाम से डीएमके पर क्या असर पड़ेगा? डीएमके के प्रवक्ता मनोराज शनमुगम ने कहा,
इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ आर के नगर विल बी रिव्यूड बाय द डीएमके लीडरशिप एंड वी विल हैव टू गो इनटू।
आज के चुनाव परिणाम से हमारे पक्ष पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अगले महीने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं जो बताएगी कि अन्ना डीएमके की सरकार को राज्य चलाने के लिए अधिकार है या नहीं। हम इतना कह सकते हैं कि तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बढ़ जाएगा। ये थे मनोराज शनमुगम के शब्द। राजनीतिक अस्थिरता के बारे में वरिष्ठ विश्लेषक और चेन्नई के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर एन सत्यमूर्ति भी सहमत हैं। उन्होंने कहा, इतना तो स्पष्ट है कि अन्ना डीएमके में अस्थिरता का माहौल होगा। आज के चुनाव परिणाम से बहुत सारी उलझन तो होगी ही। क्या इससे सारे गुट साथ में आएंगे या और अलग होंगे, ये अभी बताना मुश्किल होगा। दिनकरन का गुट भी ये नहीं चाहेगा कि सरकार गिरे। ये थे एन सत्यमूर्ति के शब्द। चुनाव का परिणाम आने के बाद विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इससे साफ होता है कि अन्ना डीएमके में बहुत उलझन है। आज के परिणाम से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि तमिलनाडु में फिर से राजनीति गर्म होते जाएगी। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
3 तलाक के खिलाफ प्रस्तावित विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एक आपात बैठक बुलाई थी। इस खबर पर और जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समीर, क्या जानकारी है आपके पास, इस आपात बैठक में क्या हुआ?
जी संदीप, इस बैठक में ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो विधेयक सरकार पेश करने जा रही है, जिसको कैबिनेट ने पास किया है, उसको खारिज कर दिया है। और ये कहा है कि सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया और 3 तलाक को लेकर के वो कानून बनाने जा रही है, जो मुसलमानों की सर्वोच्च संस्था है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनसे किसी तरह का कोई मशविरा नहीं किया, मुसलमानों की किसी दूसरी संस्था से कोई मशविरा नहीं किया, मुस्लिमों के महिला संगठनों से कोई मशविरा नहीं किया। ये उनका आरोप है। उनका ये कहना है कि वो इसके खिलाफ है, पूरी तरह से खारिज करते हैं और जिस तरह से जो तमाम इसमें मुद्दे हैं बातें कही गई हैं उनको लेकर के भी आपत्ति है उन्हें कि तलाक को लेकर के तो पर्सनल लॉ बोर्ड में जो उसमें बुराइयां हैं बहुत सारी चीजें उनको वो लोग खुद देखते हैं, और इसमें जो सजा का प्रावधान है उसको लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। और उनका कहना है कि वो लोग प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, ये हो सकता है मिलने का भी समय मांगे कि फिलहाल इसको अभी मौजूदा सत्र में संसद के न पेश किया जाए, न लाया जाए, और इसमें और लोगों से भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, दूसरे मुसलमानों के संगठन हैं, मौलाना लोग हैं, उन लोगों से एक बार पहले इस पर मशविरा कर लिया जाए, तब कोई इस दिशा में कोई कदम आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यही तय किया गया है, और शायद एक पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मेंबर ने बताया हमें कि वो लोग इसके बारे में समय मांगेंगे प्रधानमंत्री से कि ये अपील उन तक ये पहुंचाएं और इसको इसके बारे में, ताकि मौजूदा सत्र में ये पेश न किया जाए, इन लोगों का पूरा जोर जो है इस पर रहेगा।
बहुत शुक्रिया लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र। बीते दिनों बिहार के भागलपुर में एक महादलित परिवार की निशंस हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद एक बार फिर बिहार सरकार के सुशासन और सामाजिक न्याय के दावे पर सवाल खड़े हुए, और ये सवाल महिला संगठनों ने उठाए। बिहार में महिलाओं, खासतौर पर दलित और महादलितों के प्रति बढ़ती हिंसा पर सुनिए सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
भागलपुर के झंडापुर गांव के बड़ी टोला में आजकल चुप्पी छाई है। 70 घर, 385 चलते फिरते मनुष्य, लेकिन दोपहर के 2 बजे सर्द मौसम की खिली धूप में सब अपने अपने घर में दुबके हैं। रोजाना कमाने खाने वाले लोग भी बीते 25 दिन से बेरोजगार बैठे हैं, जैसा कि टोले के सुरेंद्र राम बताते हैं।
15-20
महादलितों का ये टोला बीती 26 नवंबर से ही खबरों में है। बीते 25 नवंबर की रात यहाँ मछली बेचने वाले कनिकराम, उनकी पत्नी मीना देवी और बेटे छोटू की निशंस हत्या हुई थी। कनिकराम की आंखें फोड़ दी गई थी, बेटे छोटू का लिंग काट दिया गया था, और मीना देवी की हत्या भी किसी धारदार हथियार से की गई थी। कनिकराम की 14 साल की बेटी अपने घर में ही नग्न अवस्था में बेहोश मिली थी। फिलहाल इस बच्ची का इलाज पटना के PMCH में चल रहा है। कनिकराम का सबसे बड़ा बेटा संतोष कुमार, जो बंगाल में मजदूरी करते हैं, वो बताते हैं।
हमको ऐसे नहीं था मैडम, ये बात जो सुने उसके बाद मेरा दिमाग फूरने लगा। कहीं पर नहीं, किधर भी देख रहे थे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस टाइम 2-3 दिन तो हालत ही खराब था हम लोग का। सुई भी लिया, बहुत सुई दिया, 2-3-4 सुई भी लगाया, तब ठीक।
गौरतलब है कि 25 नवंबर की रात इतनी निशंस तरीके से हत्या के बाद भी टोले के लोग इससे अनजान रहे। 26 नवंबर की सुबह 5 बजे स्थानीय निवासी दुलारी देवी के शोर मचाने के बाद ही टोले के लोगों को इस हत्याकांड की खबर मिली, जबकि 70 घर वाले इस टोले में सभी घर एक दूसरे से सटे हुए हैं और रास्ते इतने संकरे हैं कि साइकिल लेकर एक व्यक्ति भी बमुश्किल चल सकता है। स्थानीय लोग कहते हैं,
आखिर 5 बजे के दौगले सब ने जो रात को वहां मामला है तो लोग नहीं जाती है।
पहले हमरा के कोई मालूमे नहीं होले कखनी घटना होले या नहीं होले, थकलो मरलो लिए सुती रहली।
इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और 2 लोग संदेह के घेरे में हैं। SDPO मुकुल रंजन ने BBC को बताया कि बच्ची के साथ तकरीबन 10 दिन पहले 2 बार दुष्कर्म आरोपियों ने किया था, जिसकी जानकारी बच्ची ने अपने पिता कनिकराम को दी थी। घटना की रात कनिकराम और आरोपियों ने साथ में ताड़ी पी और मामला दबा देने पर सहमति बनी, लेकिन उसी रात आरोपी तकरीबन 1 बजे के आसपास कनिकराम के घर आए और बच्ची के साथ फिर से दुष्कर्म करने की कोशिश की और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उन्होंने बताया,
3 अपराधी गिरफ्तार हुए और पहले 1 अपराधी ऑलरेडी जेल जा चुका है। दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था इन अपराधियों के द्वारा, उसी क्रम में ये हत्या हो गई।
बिहार में दलित और महादलित महिलाओं के साथ हिंसा लगातार बढ़ रही है। राज्य में कैमूर जिले की बात करें तो यहां बीते 4 माह में 5 महादलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं। कैमूर की सामाजिक कार्यकर्ता कमला सिंह बताती हैं।
बहुत छोटी छोटी घटना को लेकर, जैसे मूली उखाड़ने को लेकर के घटना हो गई, किसी बच्ची की बकरी जो है किसी खेत में चली गई।
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की बिहार यूनिट की अध्यक्ष सुशीला सहाय बिहार सरकार की दोहरी नीतियों पर सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं कि एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण का राग अलाप रही है तो दूसरी तरफ महिला हिंसा लगातार बढ़ रही है। भागलपुर न्याय मंच के रिंकू यादव भी कहते हैं कि सरकार और उसकी मशीनरी पर लोगों का भरोसा लगातार कम हो रहा है।
नीतीश जी भले गुड गवर्नेंस बोल रहे हैं, आम आदमी का पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है कि अगर हम मुंह खोलेंगे भी तो पुलिस हमारी सुरक्षा की गारंटी कर पाएगी। और अपराधियों में हत्यारों दबंगों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है।
राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट भी कहती है कि साल 2016 में उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में दलितों के साथ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। सीटू तिवारी, भागलपुर के झंडापुर गांव से, बीबीसी के लिए।
और अब खेल समाचार। खेल समाचारों के लिए पूरा खेल का मैदान ही आदेश कुमार गुप्त के हवाले है।
जी, अगर संदीप भारत में इस समय बात की जाए खेलों की, तो कल विजेंद्र सिंह ने बहुत ही शानदार अपना मुकाबला जीता। इसके अलावा प्रीमियर बैडमिंटन लीग का कल आगाज हुआ, लेकिन सबकी नज़रें आज टिकी हैं मुंबई में जी मुकाबले पर, जो भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। और आज के मुकाबले के बाद श्रीलंका का जो भारतीय दौरा है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि श्रीलंकाई टीम बहुत जल्दी इस दौरे को समाप्त करना चाहती है। ऐसा लगता है कि उनका मन नहीं लग रहा, क्योंकि तभी हालत ये है कि श्रीलंका का स्कोर थोड़ी देर पहले 5 विकेट खोकर 72 रन था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का कितना दबदबा
सर्दी में विकेट का पतझड़
मुकाबले में है। और 12.1 ओवर अभी तक हो चुके हैं और स्कोर बोर्ड पर 75 रन अंकित है। आज भारत ने जब टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया तो ऐसा लगा कि शायद श्रीलंका की टीम कुछ जमकर खेलेगी, लेकिन सलामी बल्लेबाज निरोशन डिकवेला मोहम्मद सिराज के हाथों कैच हुए जयदेव उनादकट की गेंद पर, उनके बल्ले से केवल 1 रन निकला। अनुभवी उपुल थरंगा भी हार्दिक पांड्या की गेंद पर कुछ खास नहीं कर सके और जयदेव उनादकट का ही वो शिकार बने, उन्होंने 11 रन बनाए। कुशल परेरा कॉटन बोर्ड हुए वाशिंगटन सुंदर के हाथों, उनके बल्ले से केवल 4 रन निकले। और सदीरा समर विक्रमा, जिन्होंने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की थी इस भारतीय दौरे पर, आज वो भी जब 21 रन बना चुके थे तो हार्दिक पांड्या की गेंद पर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच हो गए। और थोड़ी देर पहले धनुष का गुणतिलके भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच हुए और कुलदीप यादव को ये विकेट मिला और गुणतिलके के बल्ले से केवल 3 रन निकले। लेकिन अगर भारतीय टीम जीत के रथ पर सवार है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भारत के कप्तान रोहित शर्मा है, जिन्होंने पिछले मुकाबले में सैकड़ा जड़ा, उससे पहले एक दिवसीय सीरीज में 2 शतक भी बनाया, उनके दिल की धड़कनें कुछ कम नहीं होती। आइए सुनते हैं कि हर मैच को लेकर वो भी किस तरह का तनाव महसूस करते हैं।
हम धर्मशाला में ऐसे पोजिशन में थे जहाँ पर टीम का सबसे लोएस्ट स्कोर होने वाला था, और उसके बाद मैं काफ़ी सोच रहा था अपने कैप्टनसी के बारे में और अपने टीम के बारे में कि यार ये तो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, पहली बार कप्तानी कर रहा हूँ और ये सिचुएशन में आ गया हूँ और टीम हार गई। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं होता है, हमेशा आप पे प्रेशर होता है। कोई भी ऑपोजिशन के सामने खेलो और कहीं पर भी खेलो, प्रेशर बिल्कुल होता है, क्योंकि आप 140-150 करोड़ की आबादी है हमारी, उन सारों का प्रेशर होता है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं, तो ये सब चीज़ का प्रेशर होता ही है बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहा हूँ तो हमेशा से प्रेशर था, पहले मैच से लेके अब तक। बॉम्बे में जब खेलूंगा तो भी प्रेशर होगा, क्योंकि हम सीरीज जीत गए बिल्कुल, बट जब भी आप इंडिया के लिए खेलते हो हर एक मैच आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज करो और जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करो। तो पता नहीं अब कप्तानी कब करूंगा इसके बाद, तो इसीलिए मेरे लिए हर एक मैच, हर एक सीरीज, हर एक मिनट ग्राउंड पे इंपॉर्टेंट है।
तो जैसा कि संदीप आपने सुना कि रोहित शर्मा कह रहे हैं कि जो भी मौका मिले उसे भुनाना चाहिए, और रोहित शर्मा से अच्छा मौका शायद ही किसी खिलाड़ी ने भुनाया हो। विराट कोहली की अनुपस्थिति में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की
और उन्हें अच्छी पता है कि विराट कोहली की वापसी हो रही है।
जी
बहुत शुक्रिया आदेश जी, खेल खबरें बताने के लिए विस्तार से। और थोड़ी देर में बजने वाले हैं भारत में 8:00, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगाए गए ताजा प्रतिबंधों को युद्ध जैसी हरकत करार दिया है और इन्हें अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि आर्थिक नाकेबंदी जैसा है। रूस में विपक्ष के नेता एलेक्सी नवाल्नी ने मॉस्को में एक सभा में कहा कि पूरे रूस में उन्हें समर्थन मिलना दिखाता है कि वो राष्ट्रपति पुतिन के अच्छे विकल्प हैं। दक्षिण सूडान के मुख्य विद्रोही संगठन ने सरकारी बलों पर युद्ध विराम लागू होने के कुछ ही घंटों बाद हमला करने का आरोप लगाया है। उष्णकटिबंधीय तूफान टिम्बिन दक्षिण फिलीपींस से होकर गुजर गया है, मगर अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे आदर्श राठौड़। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। दिन भर में आज इतना ही। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।